सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं साहुवज्रायिरे अरहन्ते वन्द्यूणसिद्धेवि जय पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धैर्यसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ हम आठवीं पुस्तक में पृष्ठ संख्या 28 पर आ गए हैं। अब अपना ये विषय चल रहा है कि कौन सी गति के संयुक्त इसका बंध होता है, अने कौन सी गति बांधने वाले इन प्रकृतियों को बांधेगा, उसको गति संयुक्त कहा था। यानी कौन से गति वाले जीव नहीं कहा, जीव किस गति का बंध कर रहे हैं, इन प्रकृतियों के साथ किस गति का बंध हो रहा है, या किस गति के बंध के साथ इस प्रकृति का भी बंध हो रहा है, इसकी बात यहाँ चलेगी। हम ये बड़ा पैराग्राफ पढ़ते हैं, चार लाइन पढ़ी थी हमने, फिर दोबारा पढ़ते हैं। कौन सी गति से संयुक्त बांधता है, बंध का है नहीं, बांधता है, इस पृच्छा का 14 जीव समासों से संबंध उत्तर कहते हैं, यानी उसके संबंधित, ये पहले गुणस्थान में हो तो कौन सी गति के साथ इनका बंध होगा, चौथे वाले को, पांचवे वाले को, इस तरह से, वह इस प्रकार है। मिथ्या क्या हुआ, 16 प्रकृति की बात चल रही है अपने। हाँ, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है, प्रश्न और उसके उत्तर, 16 प्रकृतियों की बात, उसी के साथ साथ सामान्य भी चर्चा हो रही है, परंतु अभी यहाँ 16 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व से लेकर 10वें गुणस्थान तक है, तो वो कौन से गति बांधनी है, कौन सी गति बन रही है और उसके साथ ये प्रकृतियां बनती है, उसकी चर्चा है। मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियों से संयुक्त उक्त प्रकृतियों को बांधता है, नरक गति के साथ भी एक ज्ञानावन दर्शना अंतराय वगैरह बंधेगी। अभी एक्सेप्ट कह के विशेष क्या कहेंगे, तो नरक गति के साथ वो उच्च गोत्र नहीं बंधेगा और यशस कीर्ति भी नहीं बंधेगी, तो उसकी बात वो कर रहे हैं। विशेष इतना है कि उच्च गोत्र को नरक गति और तिर्यक गति को छोड़कर शेष दो गतियों से संयुक्त बांधता है, यानी जो मनुष्य गति का बंध कर रहा है। अब यहाँ 16 प्रकृतियों में से उच्च गोत्र की बात है, वो उच्च गोत्र को मनुष्य गति के बंध के साथ बांधेगा, देव गति के बंध के साथ उच्च गोत्र को बांधेगा, परंतु जो मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यक गति या नरक गति बांध रहा है उसके साथ वो नीच गोत्र का बंध करेगा। यशस कीर्ति को नरक गति को छोड़कर तीन गतियों से संयुक्त होकर बांधता है, जो नरक गति को बांध रहा है वो यश कीर्ति को नहीं बांधता है, वो अयश कीर्ति को बांधता है, अन्य तीन गति के साथ यश कीर्ति का बंध होता है। अब यहां से अभी हम आगे पढ़ेंगे, सासादन गुणस्थान में 14 प्रकृतियों को नरक गति को छोड़कर तीन गतियों से संयुक्त बांधता है। 14 किस, कौन सी 14, पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अंतराय, ये जो 14 प्रकृति है। अभी गोत्र की और ये बात अभी रखी बाजू में, 14 की पहले बात करेंगे। तो दूसरे गुणस्थान वाला नरक गति को छोड़कर अन्य तीन गतियों के साथ इन 14 का बंध करता है, ऐसा क्यों कहा? हाँ हाँ, हाँ, आपका उत्तर है सासाधन वाला नरक गति में नहीं जाता, ये उत्तर नहीं है यहाँ। सासाधन वाला नरक गति का बंध क्यों नहीं करता, ऐसी बात है। हाँ, नरक गति का बंध पहले गुणस्थान में ही बांधता है। पहले गुणस्थान में नरक गति के बंध की विच्छित्ति हो जाती है, इसलिए दूसरे गुणस्थान वाला तीन ही गति बांधेगा, मनुष्य गति, देव गति, तीरंच गति, इसलिए उनके साथ इनका बंध होता है। उच्च गोत्र को नरक व तीर्य गति को छोड़कर शेष दो गतियों से संयुक्त होकर बांधता है, यानी उच्च गोत्र को कौन बांधता है, सासाधन वाला मनुष्य या देवगति बांधने वाला ही बांधता है, वो नरक गति को बांधता ही नहीं है। तो तीरंच गति को भी छोड़ देना, पहले तीन गति का बंध करता था, हमने देखा था उसमें से उच्च गोत्र की बात है। किंतु यश कीर्ति को नरक गति को छोड़कर शेष तीन गतियों से संयुक्त बांधता है, यानी सासाधन वाला नरक गति को बांधता ही नहीं है, यानी वो यश कीर्ति को अन्य तीन गति के साथ बांध सकता है तो बांधता है। यह यश कीर्ति को कौन बांधता है, दूसरे गुणस्थान वाला, यह प्रश्न अपना चल रहा है। वो अयश कीर्ति को बांधता है कि नहीं बांधता, यह प्रश्न यहाँ नहीं हो रहा है। 16 प्रकृतियों का बंध दूसरे गुणस्थान वाला करता है, तब वो उसके साथ कौन से गति के साथ इसका बंध चल रहा है, उसकी बात हो रही है। अब तीसरे चौथे गुणस्थान की बात, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीव 16 प्रकृतियों को नरक गति व तीर्यक गति को छोड़कर दो गति संयुक्त बांधता है। स के ऊपर बिंदी लगाना, क्या कहना चाहते हैं? तीर्यक गति के बंध की विच्छित्ति दूसरे में ही होती है, यानी तीसरे तीर्य गति का बंध दूसरे में तो हो सकता है, तीसरे चौथे आदि ऊपर के गुणस्थानों में, जैसे पहले में नरक गति के बंध की विच्छित्ति हुई थी, दूसरे गुणस्थान में तीर्य गति के बंध की विच्छित्ति होती है, तो अभी तीसरे और चौथे वाला देव गति और मनुष्य गति ही बांधेगा। अब उसके डिटेल में हमने, देव सम्यक दृष्टि है वो मनुष्य गति को बांधेगा, मनुष्य सम्यक दृष्टि है, तीरंच सम्यक दृष्टि है, वो देव गति को बांधेंगे, तो ये दो गतियां ही बंधेगी तीसरे चौथे वाले को। अब संयता संयत से लेकर, संयता संयत से लेकर अपूर्व करण काल के संख्यात बहुभाग तक जाकर स्थित जीव विवक्षित 16 प्रकृतियों को देव गति संयुक्त बांधते हैं। पहले ये निश्चित करना है संयता संयत कौन है, मनुष्य और तिर्यंच है, तो मनुष्य तिर्यंच सम्यक दृष्टि भी देवगति को ही बांधेंगे, तो यहाँ पांचवें गुणस्थान वाले हैं वो भी देवगति का ही बंध करेंगे, उन्हें तो अन्य किसी गति का बंध होता ही नहीं है, तो ये देवगति के साथ बांधते। फिर भी उसके लिए एक कंडीशन डाली, संख्यात बहुभाग बीत जाने पर, आपको पता है कितने संख्यात बहुभाग हैं, देवगति के बंध की विच्छित्ति जहां होती है वहां तक, हाँ, आठवें में, आठवें के कौन से भाग में भूल गए आप, हाँ हाँ, छठे भाग में, देखो आठवें गुणस्थान के हम सात भाग करेंगे, तो पहले भाग में निद्रा प्रचला की विच्छित्ति होती है, छठे भाग में 30 प्रकृतियों की उदय की है, सॉरी बंध की विच्छित्ति होती है, और सातवें भाग में आश्रति भय जुगुप्सा की होती है, तो ये 30 में ये देवगति देवगत्यानुपूर्वी आहारक आहारक अंगुभांग वैक्रेक वैक्रेक अंगुभांग ये सब बातें उसमें है 30 में, तो छठे भाग तक, इसलिए संख्यात बहुभाग का, संख्यात बहुभाग का अर्थ जब हम उसके सात भाग करेंगे तो उसमें से एक भाग छोड़कर बहुभाग यानी 6 भाग बीत जाने पर, फिर इसको पढ़ते हैं। देखो संयता संयत से लेकर अपूर्वकरण काल के संख्यात बहुभाग तक यानी छठे भाग तक जाकर स्थित जीव विवक्षित 16 प्रकृतियों को देवगति संयुक्त बांधते हैं। इन 16 प्रकृतियों का बंध वे कर रहे हैं, तो उसके साथ वो देवगति बन रही उनके, इससे ऊपर के जीव अभी जो आठवें गुणस्थान के सातवें यानी अंतिम भाग में होगा या नौवें गुणस्थान का है या दसवें गुणस्थान का है, उन्हें किसी भी गति का बंध वहाँ नहीं हो रहा है, सबकी वो विच्छित्ति हो गई, देवगति के भी बंध की विच्छित्ति हो गई, तो वो किसके साथ बांधेगा? तो हमने वहाँ कितने प्रत्यय देखे थे उसको अभी देखेंगे, ख्याल है ना? हाँ, देखो, इससे ऊपर के जीव अगति संयुक्त बांधते हैं, यहाँ तो प्रत्ययों की चर्चा ही नहीं, वो तो हमने पहले कर ली, यहाँ तो गति संयुक्त होते हैं कि नहीं होते इतनी बात है। वहाँ प्रत्यय कितने हैं वो हमने देखे थे नवे गुणस्थान के पहले भाग में, कौन से हैं कौन से नहीं, वो हास्य रति वगैरह वो सब चले गए, वेद है, फिर बाद में क्रोध मान मायल एक एक चले जाइए, और दसवें में एक लोभ है, योग तो है दोनों ही जगह, वे प्रत्यय है उनसे बंध होता है, हमने पहले ही बात की थी, परंतु वहाँ प्रत्यय कौन कौन से थे उसकी चर्चा है। अभी यहाँ इतना ही प्रश्न पूछा है कौन से गति संयुक्त इसका बंध होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में चारों ही गति संयुक्त होता है, दूसरे गुणस्थान में तीन गति संयुक्त होता है, तीसरे चौथे में दो गति संयुक्त होता है, पांचवे छठे सातवें और आठवें के छठे भाग तक एकमात्र देवगति संयुक्त बंध होता है, और आठवें के सातवें भाग और नौवां गुणस्थान और दसवें में गति संयुक्त बंध नहीं है, अगति संयुक्त या गति से असंयुक्त, ऐसा कहें कैसे भी कहें, यहाँ अगति संयुक्त कहा ना, हाँ नौ और दस के ही, आठवें का सातवां भाग, नौवां पूरा और दसवां, उसमें ये सोलह प्रकृतियों का बंध तो है परंतु कोई भी गति नहीं बन रही है, गति का बंध रुक गया है उनके, अर्थात किसी गति से मिलकर नहीं बांधते, यानी इनके साथ साथ अन्य किसी गति का बंध वहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो देवगति भी जो बन रही थी उसकी विच्छित्ति हो गई आठवें के छठे भाग में, गलत है। अब आगे का प्रश्न, अब किस गति के साथ संयुक्त बंधता है ये बात, अब ये पूछेंगे कौन से गति वाला इसको बांध रहा है, दोनों में डिफरेंस ख्याल में आया ना, ये कौन से गति का जीव है इसको बांधने वाला, तो इनका बंध तो मिथ्या दृष्टि को होता है, तो मिथ्या दृष्टि में तो चारों गति वाले बांध रहे, दूसरे में भी तीसरे में भी, ये बात अभी कहेंगे, दो प्रश्नों में क्या अंतर है ख्याल है ना। पहले कहा था कौन से गति संयुक्त बांधता है, यानी इनका बंध हो रहा है तो उसके साथ साथ गति कौन सी बन रही है वो पहले देखा, अभी जो हमने प्रश्न पढ़ चुके हम उसमें, अब ये जो नीचे के दो लाइन में क्या प्रश्न पूछा है, उक्त प्रकृतियों के कितने गति वाले जीव स्वामी होते हैं, यानी कौन से जीवों को ये प्रकृतियां बन रही है, तो देखो इस पृच्छा का परिहार कहते हैं, मिथ्या दृष्टि चारों गतियों के जीव स्वामी हैं, प्रकृतियों के स्वामी, यानी यहां बंध की बात चल रही है ना, बंध के स्वामी की बात चल रही है, बंध स्वामित्व विषय हम देख रहे हैं, सोलह प्रकृतियों का बंध करने वाले जो मिथ्या दृष्टि है वो कौन से गति वालों की बात कर रहे हैं, तो चारों गतियों की, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि भी चारों गतियों के जीव स्वामी हैं, यानी चारों गतियों के दूसरे तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले इन प्रकृतियों का बंध कर रहे हैं। अब पांचवें गुणस्थान वाले कौन से हो सकते हैं, हाँ मनुष्य और तिर्यंच गति, तो दो गतियों के संयता संयत जीव, वो जीव बराबर करना, स्वामी हैं। अब ऊपर छठे से ऊपर एकमात्र मनुष्य, कहाँ तक लेना, दसवें तक, दसवें तक, हमारी सोलह प्रकृतियों के बंध की बात चल रही ना, इसलिए दसवें तक लेना, मनुष्य है चौदहवें तक उसकी ना नहीं है, परंतु यह हमारा प्रश्न है सोलह प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव कहाँ तक है, तो दसवें तक है। उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य गति के ही जीव स्वामी है। अब बंधाध्वान सूत्र से सिद्ध है, इस वाक्य का अर्थ कहेंगे कोई, हमने पहले देखा था, हाँ सीमा, बंध कहाँ से कहाँ तक है ये सूत्र में ही बताया, सूत्र से सिद्ध है। देखो ये कौन से सूत्र से बात चल रही थी अपनी, पांचवे नहीं, छठे नंबर के सूत्र, 13वें नंबर पर देखो क्या लिखा था छठे सूत्र में। मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत उपशामक व क्षपक तक, से और तक मिला आपको? हाँ अश्विन भाई, 13 पृष्ठ 6 नंबर का सूत्र, यहां से यहां तक बता दिया ना, सीमा बता दी। पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के बंधक है, ये बंधा अध्वान हुआ, अध्वान यानी उसकी सीमा दोनों तरफ, कहां से कहां तक, इसलिए यहां कहते हैं सूत्र में ही ये बता दिया है। सूत्र से सिद्धे ने सूत्र में ही ये बात बता दी है। इसमें आप सूत्र संख्या लिख सकते हैं, सूत्र नंबर 6 पेज 13। ये हमने पहले सब प्रश्न देखे थे 8वें पृष्ठ पर। देखो अभी हमने गति संयुक्त वाला 12वां नंबर का प्रश्न देखा, कौन से गति वाले बनते बांधते हैं उसको देखा, कितने गति वाले ये स्वामी है वो भी देखा, कितने गति वाले स्वामी नहीं वो देखा, बंध अध्वान कितना है वो अभी हमने सूत्र से ही वो प्रसिद्ध है। अब आगे कौन सा प्रश्न पूछेंगे देखो, ये सादी अनादि पहले उन्होंने ही है, पहले तो यहाँ प्रश्न पूछे थे 17 और 18 में, क्या अंतिम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, क्या प्रथम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, वो भी सूत्र 6 में लिखा था उन्होंने, 6 सूत्र में उसका भी उन्होंने देखा कि अंतिम समय में सूक्ष्म सांप्रायिक काल के अंतिम समय में जाकर इन प्रकृतियों के बंध का विच्छेद होता है, ये भी वहां लिखा था, यानी उसका भी उत्तर आ गया है। अब अगला प्रश्न कौन सा है, ये बंध सादी है या अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है, या अप्रथम अचरम समय में बंध विच्छित होते, वो सब एक ही साथ आ गए तीनों प्रश्न की। देखो क्या कहते हैं, 17 नंबर का प्रश्न क्या है, क्या अंतिम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, उसके लिए ऑप्शन क्या, क्या प्रथम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, क्या अप्रथम अचरिम यानी मध्यम वाला बीच में ही कहीं, जैसे अभी हमने देखा देवगति के बंध की विच्छित्ति छठे भाग संख्यात बहुभाग बीत जाने पर यानी बीच में ही हो जाती है। तो इन प्रकृतियों के बारे में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर जो उसका है सूत्र में ही बता दिया, सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय तक उसका बंध है यानी वहां उसकी विच्छित्ति हो जाती है, तो इनका उत्तर आ गया है। अब ये 20 21 22 23 इनका प्रश्न का जवाब अभी आएगा, अभी हम मूल पृष्ठ 29 पर आते हैं। क्या सादिक बंध है, क्या अनादिक बंध होता है, क्या ध्रुव बंध होता है, या क्या अध्रुव बंध होता है, ये अनादिक बंध होता के बाद है लगाना तो वाक्य फुल बराबर हो जाएगा। इस पृच्छा का उत्तर कहते हैं, कितनी बातें, सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव, हमने सादि की बात देखी थी जो उपशम श्रेणी में चढ़ता है फिर बाद में नीचे आता है उसको सादी बंध है, अनादि से 10वें, अभी इन 16 की बात करेंगे तो अनादि से हो रहा है तो वो अनादि बंध है, इसमें ध्रुव बंदी जो है उसको ध्रुव कहेंगे, उसकी बात अभी वो जवाब देंगे अभी और क्लियर होगी, वैसे हम देख चुके हैं उनको फिर देखेंगे। इस पृच्छा का उत्तर कहते हैं, 14 प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि के सादिक होता है, क्या कहा, सादिक होता है। अब वो कैसे होगा, क्योंकि उपशम श्रेणी में बंध विच्छेद करके पुनः नीचे उतरकर बंध का प्रारंभ करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुए जीवों के उन प्रकृतियों का सादिक बंध पाया जाता है। अब दूसरा जवाब देते, दूसरी पॉसिबिलिटी, उन प्रकृतियों का अनादिक बंध होता है, किन जीवों को, क्योंकि उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़े हुए मिथ्या दृष्टि जीवों के बंध के आदि का अभाव है। बंध आदि का नहीं कहा, बंध के आदि का, यानी बंध क्यों आदि, यानी उसको स्टार्टिंग, पहले बंध रुक गया था और फिर शुरू हुआ, उसको सादी बंध कहेंगे। जो अनादि का मिथ्या दृष्टि है, अब भले अनादि का नहीं हो परंतु जो अभी तक कभी उपशम श्रेणी पर चढ़ा नहीं, ऐसे सम्यक्तों में से मिथ्यात्व में गए हुए भी जीव होंगे अन्य गुण स्थानों में से, उनको भी ये अनादि का चला आ रहा है बंध, कभी रुका नहीं है। रुकेगा कब? 11वें में जाकर वापस आने वाले, वो शपक के भी रुकेगा परंतु वो वापस नहीं शुरू होगा, इसलिए उसको नहीं लिया है, उपशमक को लिया। तो उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़े हुए मिथ्या दृष्टि जीवों के बंध के आदि का अभाव है, आदि का अभाव है ने वो अनादि है। उन प्रकृतियों का ध्रुव बंध होता है क्योंकि अभव्य मिथ्या दृष्टि जीवों के उन प्रकृतियों के बंध का कभी विच्छेद नहीं होता। वो ध्रुवबंदी चल रहे हैं ना, ये 14 जो है वो ध्रुवबंदी है। दूसरी जो है यश कीर्ति या अयश कीर्ति, उसमें तो ऑप्शनल है, परंतु ये 14 की बात कर रहे हैं, वो तो ध्रुवबंदी है और अभव्यों में तो उसका बंध कभी मिटने वाला नहीं है, इसलिए वो तो अनादि अनंत चलेगा। अब चौथी पॉसिबिलिटी, उन प्रकृतियों का अध्रुव बंध होता है क्योंकि उपशम और क्षपक श्रेणी पर चढ़ने के योग्य मिथ्यादृष्टि जीवों का बंध ध्रुव नहीं होता, यानी कायम नहीं रहता, कभी न कभी उसको अंत है। सादी शांत कहते ना, ये है तो अनादि का, अभी वो मिटने वाला है, इसलिए उसको अध्रुव कहा। यानी ये जो 14 प्रकृतियों का बंध किस किस कैसा कैसा है, सादी भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है, वो किसकी अपेक्षा वो लगाना है। हाँ, अपेक्षा अपेक्षा, ध्रुव भी है अपेक्षित है ना, क्योंकि ध्रुव किसके लिए, तो अभव्य के लिए। अध्रुव किसके लिए, भव्य जो सम्यक तो प्राप्त करके ऊपर के गुण है, वो तो क्षपक श्रेणी चढ़कर जाएंगे, उसके लिए अध्रुव, क्योंकि वो मिटने वाला है। सादी किसके लिए, उपशम श्रेणी चढ़कर 11 में से फिर नीचे आने वाला, मिथ्यात्व में चला गया, मिथ्यात्व की अपेक्षा बता रहे वा। और अनादि किसके लिए, अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए, वो अनादि है। अपेक्षा सहित ये सादी अनादि ध्रुव अध्रुव बात लगती है उसमें। हाँ, ये ऐसा है, अब ये ऐसा है ना, उनके सामने तो बड़े बड़े दिग्गज है। तो नहीं 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 भी लगाए ना जैन आचार्य, वो अपेक्षा नहीं भी लगाते हैं, वो भी वगैरह का यूज नहीं भी करेंगे, तो भी वो स्याद्वाद मुद्रित है उनकी वाणी। हाँ, तो उसमें से अर्थ निकालने की हमें जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, देखो आगे, अब ये तो 14 की बात हो गई। अब यश कीर्ति और उच्च गोत्र प्रकृतियों का भी मिथ्या दृष्टि के इसी प्रकार ही बंध होता है, फिर भी उसमें क्या डिफरेंस है वो बताएंगे। इसी प्रकार अगर होता तो 14 के साथ 16 बता देते, उसमें कुछ अंतर है तो अभी वो बताएंगे। विशेष इतना है कि दोनों प्रकृतियों का उसके अनादि और ध्रुव बंध नहीं होता। ये अनादि का क्यों नहीं होता, क्योंकि अनादि से यश कीर्ति नहीं बनता है, बनती है अयश या यश, ऐसे ऑप्शनल बनती चली आ रही है, तो प्रतिपक्षी वाली है, इसलिए उसमें दो में से एक बंधेगी। और फिर उच्च गोत्र बंधेगा या नीच गोत्र, इसलिए उसमें अनादि और ध्रुव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हमें समझना है, वो ख्याल में आए ना, तो इसके यानी ध्रुव का मतलब और हमें अनादि का मतलब ख्याल में आता है। देखो, उसमें अनादि और ध्रुव बंध नहीं होता क्योंकि इनकी प्रतिपक्ष भूत यशकीर्ति अयशकीर्ति और निज गोत्र का बंध संभव है। जहाँ प्रतिपक्ष भूत प्रकृतियां हैं, कितनी ही प्रकृतियां प्रतिपक्ष वाली है, उनमें अनादि बंध नहीं होगा। अभी मोहिनी के बारे में देखते हैं। मोहिनी कर्म में ध्रुव बंधी कौन सी है, जो अनादि से ही बनती, वह हर समय बनती ही चली आई है, जब तक विचित्ति नहीं होगी तो कौन सी होगी? मोहिनी के बारे में हम देख रहे मिथ्यात्व है, सोला कषाय और भय जुगुप्सा है, इनका बंध तो होगा ही निरंतर। अब प्रतिपक्ष भय जुगुप्सा का उदय कभी कभी नहीं होता। आप बंध, हम अब बंध की बात कर रहे हैं उदय में ऑप्शन है तो ये ऑप्शन बंधने वाले में कहाँ है? जो प्रतिपक्षी प्रकृतियां कहलाती है मोहिनी की, हास्यरति या शोकरति, और तीन वेद में से एक वेद ये ऑप्शनल है, उसको प्रतिपक्षी प्रकृतियां कहते हैं। सब प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष, हमने देखा था ना, वेदनीय में दो में से एक, गोत्र में दो में से एक, आयु तो उसमें जली जाती है कि अप्रतिपक्ष वाली और निरंतर बंधने वाली, क्योंकि बनती है तो अंतर्मूर्त लगातार बनती है और कभी कभी बनती है, उसकी बात नहीं है। कभी कभी बनती है ना, वो तीर्थंकर है, आहारक है वगैरह, उसकी बात यहाँ नहीं ली है। तो ये सप्रतिपक्ष वाली कौन कौन सी प्रकृतियां है उसकी बात है। वेदनी की दो, गोत्र की दो, चार हुई, और मोहिनी की सात, ग्यारह हुई, नाम कर्म की 51 है, देखनी है कौन सी। हाँ, पिंड में भी और अपिंड प्रकृति, जैसे हम त्रस और स्थावर ऐसे जो है ना, उन जोड़ी में भी लेना, उसमें भी प्रतिपक्षी है। जितनी जोड़ी जोड़ी वाली है वो प्रतिपक्षी है। देखो अभी गति, अरे गति चार, गति पांच, जाति, गति जाति, शरीर में आहारक आहारक अंगोपांग को छोड़ना है, तो वैकरिक वैकरिक अंगोपांग या उदारी का उदारी अंगोपांग, क्योंकि तेजस कारवाण को भी हमने निरंतर बंदी ध्रुव बंदी में लिया था, पांचों शरीर यहाँ नहीं लेना है, ख्याल है ना। तो दो और दो यानी शरीर और अंगोपांग हमने दोनों एक साथ लिया, ये चार हो गए, गति जाति शरीर बंधन संगत संस्थान और सहनन। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण को नहीं लेना यहाँ। हाँ नहीं, पहले वो विहाय गति है ना, गत्यानुपूर्वी को भी यहाँ ले लेते हैं गति के साथ। विहाय गति दो है, प्रशस्त प्रशस्त विहाय गति, बराबर। अब ये जो जोड़ी है त्रस या स्थावर, यानी त्रस बादर पर्याप्त प्रत्यय जो है चार, उसके अपोजिट, यानी ये आठ प्रकृतियां हैं होगी। और दूसरी जो जोड़ी है स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्व दुस्वर आदे अनादे यशकीर्ति अयशकीर्ति, ये बारह। अभी कितने हुए जरा देखेंगे हम, साधन आठन दहा अठरन पच तेवी संचार सत्तावीस, इक्कावन हो गए ना कोई छूट नहीं जाए अपनी प्रकृति की। तो ये प्रतिपक्ष वाली है, ये बंदेगी ऑप्शन है ना, ये बंदेगी या दूसरी बंदेगी, इस तरह से। देखो यहां तक आए हम, तो प्रतिपक्ष भूत है कौन सी? यश कीर्ति और उच्च गोत्र प्रतिपक्षी है, इसलिए उसको अनादि और ध्रुव बंध नहीं हो सकता। ध्रुव बंधी प्रकृति हमने अलग गिनाई थी, ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की नौ, अंतराय की पांच, ये 19, मिथ्यात्व सोलह, कषाय भय जुगुप्सा ये 19, 38 तो हो गई अपनी, तेजस कारमान हो गई ये 40 हो गई, फिर वर्णादि चार, अग्र लघु उपघात और निर्माण, ये 47 प्रकृतियां है। वो अनादि से बनती चली आ रही है, जब तक उसकी विचित्ति नहीं होगी हर समय वो सभी की सभी बंधेगी, उसमें ऑप्शन नहीं है, उसमें प्रतिपक्ष नहीं है। अब हम आगे देखेंगे। शेष सब गुणस्थानों में, एक कॉमा क्यों लगाए? हाँ, डैश चाहिए। शेष सब गुणस्थानों में 14 ध्रुव प्रकृतियां, क्या कहते हैं अभी, क्या क्या पढ़ रहे? अभी पहले मिथ्यात्व में बता दिया उन्होंने, अन्य गुणस्थानों में 14 ध्रुव प्रकृतियां, ये 14 की बात हो रही है। पहले मिथ्यात्व गुणस्थानों में ये बंद होता है, उसकी बात सादी है क्या, अनादि है कि ध्रुव है क्या, अना, ये सब बता दिया उन्होंने। अब मिथ्यात्व गुणस्थान को छोड़कर अभी आगे की बात चल रही है। 14 ध्रुव प्रकृतियां सादि, अनादि और अध्रुव, इन तीन विकल्पों से बनती है। अब यहाँ ध्रुव क्यों नहीं कहा? पढ़ो पढ़ो ऊपर क्या आया था, ध्रुव किसको कहा था? बहुत अच्छा, अभव्य को ध्रुव होती है। अब ये दूसरा गुणस्थान प्रकट हुआ है, ये भव्यत्व भी सिद्ध हो चुका है उनका, है ना? और आगे चलकर वो बिल्कुल उसका बंध मिटने वाला है, इसलिए उसको अध्रुव कहा। इसलिए मिथ्या तो गुणस्थान को अलग निकाल कर उन्होंने बात बताई, अब आगे के गुणस्थानों में अलग से बात बताएं। वहां इन दो प्रकृतियों का ध्रुव भंग नहीं है, क्योंकि उन भव्य जीवों के, इन दो प्रकृतियों का नियम से बंध विच्छेद संभव है। इन दो प्रकृतियों का, दो नहीं चाहिए, इन 14 पाएंगे। मूल में दो शब्द नहीं है, हम पढ़ेंगे प्राकृत भी, और दो शब्द वहाँ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह 14 की बात हो रही है। देखो फिर हम पहले ऊपर का पढ़ लेते, फिर अरविंद ने कोई सजेशन है तो देना मैं मुझे। अंतिम लाइन प्राकृत की, ध्रुव भंगो नत्थी, उसके पहले वाली लाइन पढ़ेंगे, नीचे से तीसरी लाइन अंत में, सव गुण ठाणेसु शेषेसु, यानी शेष सभी गुणस्थानों में 14 ध्रुव पयड़ियों, ये जो 14 ध्रुव प्रकृतियां हैं, उनका नाम तो ध्रुव प्रकृतियां हैं, परंतु है तो ध्रुव, कब से वो अनादि से बनती चली आ रही है, फिर भी भव्य जीव है, अभी दूसरा गुणस्थान प्रकट किया है, इसलिए अभी वो अध्रुव हो जाएगी। उन गुणस्थानों में कौन सा बंध चल रहा है उसकी बात चल रही है। मिथ्यात्व में तो ध्रुव बंध था उनका, अभी कैसा है? सादि अनादि अध्रुवमिदि तिहि वियप्पे ही बज्जन्ति, यानी तीन विकल्पों से बनती है, कौन से? सादि, अनादि और अध्रुव, बराबर। ध्रुव भंगो नत्थी, यानी इन्हीं के बारे में ये तीन बंध है, ध्रुव बंध नहीं है, इन्हीं 14 के बारे में यह कथन है। आगे भी पढ़ो, तेसिम भवियाणम नियमेण बंध वोच्छेद संभवादो, उसका कारण भी बताते हैं कि भव्यों में उसका बंध विच्छेद संभव है, इसलिए किसमें? भव्य जीवों में नियम से उनका बंध विच्छेद संभव है, इसलिए वहां ध्रुव बंध नहीं है। तो ये 14 की बात चल रही है। अब यश कीर्ति और उच्च गोत्र की बात अगले लाइन में, वो भी पढ़ लेते हैं। जस कीर्ति उच्चा गोदानम पुण बंधो सव गुणठाणेशु सादि अध्रुवो चेव, सभी गुणस्थान में सादि और अध्रुव है। सादि क्यों कहा? यहाँ अनादि भी लिया था, अनादि क्योंकि ये ध्रुव बंधी प्रकृति अनादि से बनती चली आई थी, अनादि से बनती चली, जैसे ज्ञानावरण है मिथ्यात्व में भी बंद रही थी और आगे के गुणस्थानों में भी बंधेगी जब तक दसवें गुणस्थान में नहीं जाएगा। परंतु इन यश कीर्ति को और उच्च गोत्र को अनादि का नहीं कहा, क्योंकि कभी निज गोत्र भी बंधा था, कभी अयश कीर्ति भी बंधी थी, इसलिए यही प्रकृति अनादि से नहीं बनती चली आई। इसलिए उसमें दो ही प्रकार का बंध है, सादि और अध्रुव। अध्रुव क्योंकि आगे जाकर इसकी भी वो तो बंध विचित्ति होगी ऊपर श्रेणी में चढ़कर, ख्याल आता है कुछ? हाँ, इसलिए ये जो हमने अर्थ में इन दो प्रकृतियों का ऐसा लिखा है, तो इन प्रकृतियों का ऐसा वो दो शब्द निकाल देना, 14 लिखो तो और अच्छा है। मूल में तो उन्होंने नंबर नहीं लिखा था, परंतु उन 14 की बात चल रही थी, तो दो के बदले 14, क्योंकि 14 की बात यहाँ हो रही है। अब हम करेक्शन करके फिर पढ़ती हूँ, यह अंतिम लाइन 29 पेज पर की, इन 14 प्रकृतियों का ध्रुव भंग नहीं है। किसके लिए? दूसरे गुणस्थान से आगे के लिए। मिथ्या दृष्टि में तो उसको ध्रुव भंग भी कहा था, क्योंकि उन भव्य जीवों के इन 14 प्रकृतियों का नियम से बंध विच्छेद संभव है, इसलिए उनको अध्रुव कहा, ध्रुव नहीं है ऐसा कहा। परंतु अब 14 की बात हुई, अभी 2 की बात अब बता रहे हैं। परंतु यश कीर्ति और उच्च गोत्र प्रकृतियों का बंध सर्व गुणस्थानों में सादी और अध्रुव ही होता है, ही लगाया सर्व गुणस्थानों में, मिथ्यात्व सहित सभी में। क्योंकि उसमें प्रतिपक्षी प्रकृतियां है, इसलिए उसको सादी और अध्रुव कहा। अब ये 16 प्रकृतियों की बात हो गई, अब 7 नंबर का सूत्र हम नया पढ़ने जा रहे हैं। निद्दा निद्दा पहला पहला थीण गिद्धि यानी स्त्यानुग्रुद्धि अनंतानुबंधी कोहमान माया लोभ इथि वेद तिरिक खाऊ तिरिक गई चौ संठान चौ संगठन तिरिक गई पायोगानुपूवी उज्जोव अपसत्थ विहाय गई दुभग दुस्सर अनादिज नीचा गोदानम को बंधो को अबंधो। ये कुछ याद आता है? ये सब लिस्ट काहे की है? हाँ, दूसरे गुणस्थान के बंध की विचित्ति की है। ये प्रकृतियों के नाम नीचे उनके नाम पढ़ेंगे। देखो, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ स्त्री वेद तिर्यगायु तिर्यक गति चार संस्थान। कौन से चार संस्थान? बीच वाले, हाँ, न्यग्रोध परिमंडल स्वाती कुब्जक और वामन, चार सहन नहीं, ये भी बीच वाले, वजनाराच नाराच अर्धनाराच और किलित। तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी उद्योत अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र। इन प्रकृतियों का कौन बंधक है और कौन अबंधक है, तो इसकी लिमिट कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक? पहले और दूसरे गुणस्थान वाले बंधक है, ऊपर के बंधक नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, यह पृच्छा सूत्र होकर देशामर्शक है। अतएव क्या मिथ्या दृष्टि बंधक है, क्या सासादन सम्य दृष्टि बंधक है, क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि बंधक है, इस प्रकार जाकर क्या अयोगी बंधक है, क्या सिद्ध बंधक है, क्या इन कर्मों का बंध पूर्व में विच्छिन्न होता है, क्या उदय पूर्व में विच्छिन्न होता है, यानी उनके बंध पहले विच्छित्ति होती है कि उदय की विच्छित्ति पहले होती है, क्या दोनों साथ ही विच्छिन्न होते हैं, ये जो पहले हमने सभी प्रश्न पूछे थे वो भी यहाँ लागू होंगे। ये प्रकृतियां क्या स्वोदय से बनती है, क्या परोदय से बनती है, यदि इन गुणस्थानों में उनका उदय भी है तो वो स्वोदय से बनती है, या कभी कभी स्वोदय परोदय दोनों से भी बनने वाली होती है, क्या स्वोदय परोदय से बनती है। फिर दूसरा क्या प्रश्न, क्या सांतर बनती है, क्या निरंतर बनती है, क्या सांतर निरंतर बनती है, क्या प्रत्ययों से बनती है, क्या बिना प्रत्ययों से बनती है, फिर कहेंगे वहाँ कौन कौन से प्रत्यय हैं, मूल प्रत्यय कौन से, उत्तर प्रत्यय कौन से। क्या गति संयुक्त बनती है, क्या अगति संयुक्त बनती है, अगति संयुक्त होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, इन कर्मों के बंध के स्वामी किन गतियों वाले हैं और किन गतियों वाले नहीं होते। चारों गति वाले होगे ना, होगे। अच्छा, बंधाध्वान कितना है, यानी उसके सीमा लिमिट कहाँ से कहाँ तक। क्या चरम समय में बंध विच्छिन्न होता है, क्या प्रथम समय में बंध विच्छिन्न होता है, क्या अप्रथम अचरम समय में बंध विच्छिन्न होता है, क्या इन प्रकृतियों का सादिक बंध है, क्या अनादिक बंध है, क्या ध्रुव बंध है, क्या अध्रुव बंध है। इस प्रकार ये प्रश्न यहाँ करना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर कहने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, अब इन सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा अपने को। आठवां सूत्र, इसमें कोई संदेह नहीं ना, अभी ये तो प्रश्नात्मक है, उसके उत्तर तो आगे आएंगे तब हमको, क्योंकि प्रश्नों की भाषा तो हमने पहले समझ ली है, पूर्व के सूत्र में इसकी चर्चा बहुत हुई है इन प्रश्नों की, अब उसका जवाब यहाँ हमें अपेक्षित है। तो आठवें सूत्र में कहते हैं, मिच्छा इट्ठी सासा शासन सम्मा इट्ठी चाहिए, शासन सम्मा इट्ठी बंधा, एदे बंधा अवशेषा अबंधा। इसका अर्थ क्या है, पूर्वोक्त प्रकृतियों के, ये कौन से, वो हमने देखे ना दूसरे गुणस्थान में विच्छित्ति होने वाले, ये लिस्ट देखे, नंबर कितने उसका, कितनी संख्या, 25। तो पूर्वोक्त प्रकृतियों के मिथ्या दृष्टि और सासादन समय दृष्टि जीव बंधक हैं, ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है, तीसरे गुणस्थान तक से लेकर अयोगी तक सभी अबंधक है, सिद्ध भी। यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि बंध के स्वामित्व और अध्वान की प्ररूपना द्वारा, ये तो प्ररूपना कर दिए ना, स्वामित्व भी बता दिया, मिथ्या दृष्टि और सासादन बंधक है, वो उसका स्वामित्व हुआ, कहाँ से कहाँ तक तो पहले और दूसरे, ये भी उन्होंने बता दिया। उसकी प्ररूपना द्वारा वह पृच्छा सूत्र में उद्दिष्ट सब अर्थों का निरूपण करता है। ये जितने सारे हमने देखे थे उसमें प्रत्यय होते कि नहीं होते, वो सांतर है कि निरंतर है, सादिये कि अनादिये, उन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। बंध स्वामित्व और अध्वान चूंकि सूत्र से ही जाना जाता है, अतः इन दोनों का अर्थ यहाँ नहीं कहा जाता, वो तो अभी दोबारा नहीं बताएंगे। स्वामित्व कौन है, पहले दूसरे गुणस्थान वर्ती, और उसका अध्वान भी पहले से लेकर दूसरे तक। क्या इनका बंध पहले विच्छिन्न होता है या उदय पहले विच्छिन्न होता है, इसका अर्थ कहते हैं। स्थान वृद्धि आदि तीन प्रकृतियां अभी हम सोचेंगे, पहले बंध कहाँ तक है और उदय कहाँ तक है, याद है, हाँ उदय छठे तक है, उदय की विच्छित्ति छठे में होती है और बंध की विच्छित्ति दूसरे में होती है, यानी पहले बंध की विच्छित्ति होती है, बराबर। तो स्थान वृद्धि आदि तीन प्रकृतियों का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, तत्पश्चात उदय का विच्छेद होता है, क्योंकि सासादन समय दृष्टि के चरम समय में बंध के नष्ट होने पर पश्चात ऊपर जाकर प्रमत्त संयत में इनके उदय का विच्छेद पाया जाता है। हम पहले अपना पक्का करेंगे फिर पढ़ेंगे, फिर अनंतानुबंधी चतुष्टय का, उसका बंध पहले मिटता है कि उदय पहले, दोनों साथ में, जहाँ तक उदय है वहाँ तक ही बंध है, बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति एक साथ होती है, यानी तीसरे के आगे उदय भी नहीं और बंध भी नहीं। तो अनंतानुबंधी चतुष्टय का बंध और उदय दोनों साथ नष्ट होते हैं, क्योंकि सासादन समय दृष्टि के चरम समय में इनके बंध और उदय का एक साथ विच्छेद देखा जाता है। अब स्त्रीवेद की बात है, स्त्रीवेद के बंध की विच्छित्ति अभी हमने देखी, हाँ दूसरे में, और उदय की विच्छित्ति नौवे में, उसी बंधे हुए की बात नहीं चल रही अभी, उदय इन जनरल की बात है। देखो, स्त्री वेद का पूर्व में बंद पश्चात उदय विच्छिन्न होता है, क्योंकि सासादन गुणस्थान में बंद के विचित्त होने पर तत्पश्चात ऊपर जाकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में उदय का विच्छेद होता है। अनिवृत्तिकरण के पहले भाग में सवेद भाग है, वहां तक स्त्रीवेद का उदय पाया जाता है। इसी प्रकार तिर्यगायु, तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, उद्योत और निज गोत्र, अभी पहले इसको देखते हैं, फिर पढ़ना पलटेंगे हम। देखो तिर्यक आयु का बंध कहाँ तक है और उदय कहाँ तक है। बंध, हाँ, तिर्यक आयु का बंध दूसरे तक है, हाँ, उदय पांचवे तक है। तिर्यक गति और तिर्यक गत्यानुपूर्वी का, हाँ, उदय चौथे तक है, और तिर्यक गति का उदय पांचवे तक है, और दोनों का बंध दूसरे तक है। उद्योत का बंध, बंध हाँ दूसरे में, अभी यहाँ पढ़ा ना हमने, अभी पढ़ा इसमें, हाँ दूसरे में बंद की विच्छित्ति उदय पांचवे तक है। नीच गोत्र के बंद की विच्छित्ति दूसरे, और उदय, उदय भी पांचवा, क्योंकि तिर्य गति का उदय है तब तक नीच गोत्र का भी उदय। हमने देखा तिर्य गति के साथ नीच गोत्र होता है। तो यहाँ लिखते इन प्रकृतियों का पूर्व में बंद विच्छिन्न होता है, तत्पश्चात उदय का विच्छेद होता है, क्योंकि सासादन गुण स्थान में बंद का विच्छेद हो जाने पर ये सारी प्रकृतियां सासादन में विच्छेद होने वाली है। उदय भले अलग अलग की जगह उसका मिटने वाला है, पश्चात ऊपर जाकर संयता संयत, स के ऊपर बिंदी लगाना, संयता संयत गुण स्थान में उदय का विच्छेद होता है, तथा तिर्यक गति प्रायज्ञानपूर्वी के उदय का विच्छेद असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में पाया जाता है। उसको एक को छोड़कर बाकी तो पांचवे गुणस्थान तक उदय है उसका। इसी प्रकार मध्यम चार संस्थानों का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है। अभी है ना, यहाँ जो बंध की विच्छित्ति हमने दूसरे गुणस्थान में गिनाई है, कौन सी, वजन आराच, नाराच, अर्ध नाराच और कीलित। अभी इनके उदय की विच्छित्ति कहाँ होती है, नीचे से जाएंगे ना, हाँ, नीचे के तीन संस्थान सातवें तक है, यानी वो पहले संस्थान तो अभी हमने सहनन की बात करने में, यहाँ संस्थान हो रहे हैं, संस्थान का उदय तो तेरहवें तक है, छह संस्थानों का उदय तेरहवें तक है, और सहनन में से देखो सातवें में नीचे के तीन, फिर दूसरा और तीसरा सहनन है वो ग्यारहवें तक है, और पहला तेरहवें तक, तेरहवें में उदय की विच्छित, चौदहवें वाले को नहीं होता है। यानी सहनन भले वो शरीर है वहां पर, सहनन नाम कर्म का उदय मिट जाता है। देखो ये संस्थान की बात पहले। इसी प्रकार मध्यम चार संस्थानों का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, तत्पश्चात उदय का विच्छेद होता है, क्योंकि सासादन गुणस्थान में बंध के रुक जाने पर ऊपर जाकर संयोग, देखो देखो शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है, और योग के कारण नए परमाणुओं का ग्रहण होता है, हाँ। और जो बन गया शरीर उसके रहने में कोई बात नहीं, जैसे हम देखते ना वो तो इंद्रिय संबंधी ज्ञान भी है नहीं है, फिर भी इंद्रियां बनी है वहां पर। सहयोगी के भी मन के द्वारा जानने का काम नहीं चल रहा है, परंतु द्रव्यमन पहले बना बनाए वहां पड़ा है, अभी उसकी जरूरत नहीं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं है कुछ। वैसे शरीर नाम, पहले जब तक शरीर नाम कर्म का उदय, उनके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है सहयोगी के, तो उनके वो सब परम औदारिक जाति के परमाणुओं का ग्रहण भी चल रहा है। अब तेरहवें में से चौदहवें में गए, शरीर नाम कर्म का उदय मिट गया, योग भी मिट गया, क्योंकि योग था ही उसके कारण। कारमान शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, उदारिक शरीर नाम कर्म, उसके कारण योग होता है। वैसे वैसे जाति के परमाणु का ग्रहण होता है। हमने पहले देखा प्रत्येक शरीर नाम कर्म का भी उदय मिटेगा, परंतु त्रस बादर पर्याप्त नाम कर्म का उदय चलता रहेगा। ये निर्माण नाम कर्म का उदय मिट जाएगा, क्योंकि वो तो शरीर की रचना में ये जो कुछ निमित्त भूत कर्म है उनके उदय वहीं पर मिट जाते हैं। सब तेजस शरीर नाम कर्म, कारमान शरीर नाम कर्म, उदारिक शरीर नाम कर्म, सबके उदय तेरवे में है, तेरवे के आगे नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म भी वहीं पर है, वहीं तक है, परंतु अभी जो शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण है वो तो बना है, वो तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, नया कुछ ग्रहण नहीं होगा वैसा। ऊपर जाकर संयोग केवली गुणस्थान में उदय का विच्छेद होता है। ये संस्थान की बात है, छह संस्थान चलते हैं ना तेरहवें गुणस्थान तक, इसी प्रकार ही मध्यम चार सहनन है, स के ऊपर बिंदी लगाना, क्योंकि सासादन गुणस्थान में इनके बंध के रुक जाने पर ऊपर अप्रमत्त संयत और उपशांत कषाय गुणस्थान में क्रम से दो दो सहननों का उदय क्षय देखा जाता है। वो लिखा तो नहीं है, हमें मालूम है अप्रमत्त संयत में कौन से दो, अर्ध नाराज और किलित। और फिर उपशांत कषाय में हाँ वज्र नाराज और नाराज। इसी प्रकार अप्रशस्त विहार गति का भी कथन करना चाहिए। अभी दूसरे गुणस्थान में बंधन की विच्छित्ति हुई, उदय की विच्छित्ति कहाँ होगी? हाँ हाँ कितने, हाँ कहाँ, चौथे में। अरविंद भाई हाथ कर रहे तेरहवे में, तेरहवे में देखो तेरहवे गुणस्थान के भी विहार पाया जाता है ना। एक बात आई थी शास्त्र में, उनकी जो ये विहार आदि क्रिया जो है वो औदयी की है, यानी उनके पूर्व कर्म के उदय से चलती है। अभी तीर्थंकर को तो प्रशस्त विहार गति होगी, परंतु अन्य किसी केवली को होगा अप्रशस्त विहार गति का उदय, उससे कुछ लेना देना नहीं है। चाल में कोई ऐसी खराबी हो जिसको कहते हैं, जैसे मनोज्ञ चाल और अमनोज्ञ चाल, हाँ हाँ, परंतु उसके कौन से कर्म का उदय है उसकी बात चल रही है। हाँ उन्होंने ऐसा कि वो चलकर नहीं जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं, नहीं नहीं चलकर नहीं जाते ऐसा कहे कि, परंतु वो भी पैर क्रमिक ऐसा जाते हैं, क्योंकि तभी तो कमलों की रचना होती है, दोनों पैर एक साथ चलते हैं, उनका उदय तो वहां पाया जाएगा उस नाम कर्म का उदय। जैसे हम उनके, जैसे हमने देखा असाता का उदय भी है कि नहीं उनके, हाँ उदय की बात, जैसे नवे गुणस्थान में वेदों का उदय होता है वहां वैसा कुछ हम कार्य की अपेक्षा उदय को देखते हैं।
कर्म का उदय है इतना देखो, बाकी वो उसका इफेक्ट क्या होता है वो देखो मत, तो बात गले में उतरेगी। क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है ना, वेद का उदय बता रहे हैं, अरे ये तो पांचवें गुणस्थान से ही जीव ने ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया है, ख्याल में है ना, और मुनि अवस्था में तो टोटल नहीं है क्रिया की अपेक्षा से, लेकिन वहां तो नौवे गुणस्थान तक उदय बताया है।
अब कोई मुनिराज ऐसे हो गए ना एक जगह स्थिर है वो चलेंगे ही नहीं, फिर भी विहार गति का उदय तो चल रहा है। कौन से कर्म का उदय है उसकी बात है। देखो इसके कारण बताते, क्योंकि सासादन गुणस्थान में बंध के रुक जाने पर ऊपर संयोग केवली में उदय का विच्छेद होता है। इसी प्रकार, अभी इसी प्रकार का उत्तर मैं आपसे चाहती हूँ, दुर्भग और अनादेय का कथन करना चाहिए। दुर्भग के बंदे की विचित्ति अभी हमने पढ़ी, दूसरे में होती है, और दुर्भग के उदय की विचित्ति चौथे में दुर्भग अनादेय और अयशस्वी होती, वहाँ उदय की विचित्ति 17 की देखी थी हमने, उसमें से ये 3 है। देखो दुर्भग और अनादेय, यानी बंदे की विचित्ति दूसरे में होती है और उदय की विचित्ति चौथे में होती है, क्योंकि सासाधन में बंद के रुक जाने पर ऊपर असंयत समय दृष्टि में उदय का विच्छेद होता है। ये लिखा है ना यहाँ, भले हम गलत हो जावे पहले अपने मन से तो सोचे ये विच्छेद बराबर करना, उच्छेद हुआ विच्छेद होता है। इसी प्रकार दूसवर का भी कहना चाहिए, अभी दूसवर की बात बोलो, दूसरे में बंदे की विच्छित्ति है, उदय की विच्छित्ति 13वें में है, वहाँ सुस्वर दूसवर और प्रशस्त अप्रशस्त विहाय दोनों की जोड़ी ली थी वहां पर, क्योंकि सासाधन में बंदे के रुक जाने पर संयोग के विलय में उदय का विच्छेद होता है। तो ये पहले बंदे की विच्छित्ति होती है कि उदय की विच्छित्ति, इसका हमें उत्तर मिल गया। अब अगला प्रश्न वो स्वोदय परोदय संबंधी होगा, पूर्वोक्त प्रकृतियां क्या स्वोदय से क्या परोदय से या क्या स्वपरोदय उभय रूप से बनती है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है, स्त्यान गृद्धित्रय स्त्रीवेद तिर्यक आयु तिर्यक गति चार संस्थान चार सहनन तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी उद्योत अप्रशस्त विहाय गति अनंतानुबंधी चतुष्क दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र, इन प्रकृतियों की मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि स्वोदय से भी और परोदय से भी बांधते हैं, भी लगाए क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। देखते हैं हम एक एक को, स्त्यान गुरुद्धि त्रय, उन्होंने कहा स्वोदय से भी बनती है और परोदय से भी बनती है, निद्रा में भी बंधेगी, और किसी को स्त्यान वृद्धि का उदय नहीं है, निद्रा प्रचला का है, या कोई उसका भी उदय नहीं है जागृत है तो भी बंधेगी या निद्रा में भी बंधेगी, क्योंकि ये नौ के नौ अभी तक बंध रही है, यहाँ तक नौ दर्शनावरण की नौ बंध रही है और हर समय बंध रही है। अब जाके दूसरे के अंत में उसके विच्छेद होगा तो तीसरे चौथे वाले को नहीं बंधेगी, यानी अभी तक बंध ही रहे हर समय, यानी स्वोदय से भी बनती है और परोदय से भी बनती है। स्त्री वेद, जिसको पुरुष वेद का उदय है ऐसे मिथ्या दृष्टि और सासाधन वाले को स्त्री वेद का भी बंध हो सकता है ना, या कोई स्त्री वेदी को स्त्री वेद का बंध होगा, तो स्वोदय परोदय दोनों से बनती है। तिर्यगायु बांधने वाले कौन होंगे, स्वयं तिर्यगायु का उदय वाले भी हो सकते हैं, या चारों गति के जो चारों आयु वाले कोई भी हो सकते हैं, अन्य आयु वाले भी बांधेंगे। तिर्य गति के बारे में वही है, चार संस्थान, उसी संस्थान के उदय में वो बंधेंगे या अन्य संस्थान के उदय में बंधेंगे। सहनन भी ऐसा ही है, या बिना सहनन वाले को भी बंधेंगे, बिना सहनन वाले को सहनन का बंध होगा कि नहीं होगा देव और नारकी जो है वो बिना सहनन वाले हैं, एक इंद्रिय भी है, हाँ तो वो सहनन को बांध रहे हैं ना, जैसे निगोद है, उनके सहनन नहीं है, सहनन का उदय उनको नहीं है, परंतु वो सहनन का बंद करेंगे तभी जाके अभी कोई मनुष्य में आकर मोक्ष भी चले जाते, तो निगोद जीव वज्र ऋषभ नारा सहनन का बंद कर रहा है, ऐसे वहां कुछ उसके शुभ परिणाम भी हो गए। तिर्य गति प्रायज्ञानपूर्वी, ये तो हो गया तिर्य गति समान। उद्योत, उद्योत के उदय वाले को भी बन सकती है, बिना उद्योत के उदय वाले को भी उद्योत बंधेगी, जैसे मनुष्यों को नारकियों को देवों को नहीं है उद्योत, और तिर्यंचों को भी सभी को कहा है, जिसको नहीं है वे भी उद्योत का बंध कर सकते हैं। अप्रशस्त विहाय गति, भले उदय किसी का भी हो, प्रशस्त का हो या अप्रशस्त का हो, पुनः अप्रशस्त व्याकृति बन सकती है। अनंतानुबंधी चतुष्क, ये तो स्वोदय स्वोदय में ही बंधेगी। उसमें ऐसा लेते हैं परोदय यानी क्रोध का उदय होते हुए मान माया लोभ बनते हैं इसका, या मान के उदय में क्रोध भी बन रहा है, इस तरह से उसको स्वोदय परोदय लेना। यहाँ अनंतानुबंधी का नाम लिया क्योंकि यहाँ बंधे की विच्छित्ति बतानी थी, परंतु उदय में क्रोध या मान या माया या लोभ ऐसा लेते हैं तो स्वोदय और परोदय से बनती है। दुर्भग दुस्वर अनादेय नीच गोत्र, इनके उदय हुए भी इनको बंधेगा, इनका उदय नहीं होगा अपोजिट पार्टी का उदय होगा तो भी इनका बंध हो सकता है। तो ये दो गुणस्थान वालों की बात चल रही है, वो स्वोदय से भी और परोदय से भी बांधते हैं क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। अब सांतर निरंतर की बात करेंगे। उक्त प्रकृतियां, ये कौन से प्रकृतियों की बात, 25 जिनके बंध विच्छेद दूसरे गुणस्थान में होता है, अभी हमने लिस्ट पढ़ी थी 7 नंबर के सूत्र में। उक्त प्रकृतियां क्या सांतर क्या निरंतर या क्या सांतर निरंतर बनती है, अब इसका अर्थ कहते हैं। स्त्यान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क निरंतर बनती है क्योंकि ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। ध्रुवबंधी प्रकृतियों के 47 की हमने लिस्ट देखी थी, तो उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मिथ्या तो 16 कषाय भय जुगुप्सा देखी थी ना, तो उसमें ये होती है। स्त्री वेद को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि सांतर बांधते हैं। ये सांतर क्यों कहा, 3 वेदों में से कोई, ये मिथ्या दृष्टि में तो 3 वेद में से कोई वेद बांधेगा और दूसरे गुणस्थान वाला स्त्री वेद या पुरुष वेद बांधेगा, इसलिए सांतर। क्योंकि बंधक काल के क्षीण होने पर नियम से प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध संभव है। कुछ काल तक स्त्री वेद बांधा, फिर दूसरा कोई दूसरे गुणस्थान वाला पुरुष वेद को भी बांध सकता है, ऐसा नहीं कि वो कायम एक ही का बंध का, जैसे उदय एक ही का एक चलेगा, कोई भी भव है उस भव में उसी वेद का उदय चलेगा, उसमें पलटना नहीं होता, परंतु बंध में तो होगा पलटना। तिर्यक आयु को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि निरंतर बांधते हैं। ये निरंतर कहा, ध्रुव ने कहा या अनादि नहीं कहा, निरंतर बंधने वाली प्रकृतियों के हमने क्या देखा था, उसका डेफिनेशन लक्षण क्या कहा था, हाँ अंतर्मूर्त तक तो कम से कम बंधेगी, आदि लिया उसके ऊपर के काल हो सकते हैं, इसलिए उसको निरंतर बंदी कहा। क्योंकि काल के क्षय से बंध के रुकने का अभाव है, यानी काल खत्म हुआ और वो बंद रुक गया ऐसा नहीं, उसका जो अंतर्मूर्त है उतना तो बंद होगा ही उसका। जैसे उद्योत प्रकृति है वो एक समय बंधने वाली भी है, कभी बंधेगी नहीं भी बंधेगी, परंतु आयु एक बार बंधना शुरू होगा तो वो अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी ही। तिर्यक गति और तिर्यक प्रायज्ञान पूर्वी को सांतर निरंतर बांधते हैं, क्योंकि हमने देखे ना गति में तो पहले गुणस्थान वाले तो 4 गति में से 1 गति वाले प्रतिपक्षी वाली है, और दूसरे गुणस्थान के लिए नरक को छोड़ो तो 3 गति में से 1 गति बांधता है, तो इसलिए उसको सांतर कहा। सांतर निरंतर किस अपेक्षा से कहते वो ख्याल में आए ना, कौन सी, हाँ वो सांतर भी हो सकती है निरंतर भी हो सकती है। एक अंतर्मूर्त तक बनती है ऐसा नहीं कहो, एक समय में बंधेगी, कितने वो अधिक से बन सकती है, परंतु उसको प्रतिपक्षी वाले वहां कर्म है इसलिए उसको ज्यादा नहीं लिया। उद्योत वाले तो प्रतिपक्ष भी नहीं है, बंधेगी तो बंधेगी नहीं तो रुक ही जाएगी, एक समय वाला भी बंद हो सकता है वहां। हाँ उसको भी सांतर कह सकते हैं, और यहाँ तो प्रतिपक्ष वाले को भी सांतर कहेंगे। हाँ शंका कौन सा? नहीं नहीं नहीं, सतत चालू होता है इसमें। अभी इसमें शंका समाधान आ रहा है उसके बारे में। देखो, प्रतिपक्ष भूत प्रकृतियों के बंध की उपलब्धि होने से सांतर बंध भले ही हो, ये शंकाकार कह रहा। हमने क्या सांतर कहाँ कहा था? प्रतिपक्ष है तो वहां तो सांतर होता है, किंतु निरंतर बंध नहीं हो सकता क्योंकि उसके कारणों का अभाव है। वहां निरंतर क्यों कह रहे हैं? प्रतिपक्ष में तो सांतर कहो, यहाँ क्या लिखा? सांतर निरंतर दोनों शब्द डाले। उसका समाधान, इस शंका का उत्तर कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तेज कायिक और वायु कायिक मिथ्या दृष्टियों तथा सप्तम पृथ्वी के नार की मिथ्या दृष्टियों के भव से संबद्ध संकलेश के कारण उक्त दोनों प्रकृतियों का निरंतर बंध पाया जाता है। वो विशिष्ट अपेक्षा सहित क्या कहा? अग्नि कायिक और वायु कायिकों का बंध किसका होगा? मनुष्य गति का होगा कि नहीं होगा, कि देवगति का होगा कि नरगति का होगा? तीनों ही गति का नहीं होगा, एकमात्र तीरंश गति को ही बांधेंगे। तो अग्नि कायिक और वायु कायिक की अपेक्षा उनका बंध निरंतर है, उन्हें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं वहां पर। उसी प्रकार सातवें नरक के नारकी, वो भव संबंधी संकलेश के कारण हर समय वो तीरंश गति को ही बांध रहे हैं, ये उनकी अपेक्षा से उसको निरंतर कहा। हाँ, तेजस कायिक और वायु कायिक को एकमात्र तिर्यंच गति का ही बंध होता है। उल्टा में उल्टा पूर्व भव में किसी ने मनुष्य गति बांध रही है कि? हम देखते हैं, हमने जो जो कुछ गतियां बांधी वो अंदर पड़ी रहती है। तो ऐसे सत्ता में मनुष्य गति हो और कोई वायु कायिक में जन्मा हो तो वहां उसकी उद्वेलना हो जाती है, वो मनुष्य गति ट्रांसफर हो जाती है तिर्यक गति रूप से, वो रहती नहीं, वो इतना वो वहाँ के परिणाम ऐसे असंकलिश है। और वो मनुष्यायु मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी किसी को बांधता ही नहीं, वो जीव अग्निकायिक और वायुकायिक, यानी मनुष्य में आ ही नहीं सकता। निगोद का आ सकता है, सूक्ष्म निगोद हो तो भी आ सकता है, और बादर निगोद आकर मोक्ष भी जा सकता है, परंतु अग्निकायिक वायुकायिक मनुष्य में नहीं आएंगे। ये बहुत स्पष्ट भरो अच्छी तरह दिया। उसका कारण भी क्या लिखा? उनकी अपेक्षा से ये निरंतर कहा है। हाँ, जहाँ ऑप्शन है, जहाँ प्रतिपक्ष है, दूसरी गति बांध सकती है, तो वहाँ तो वो उसको सांतर कहा। हमने देखा ना, कोई मिथ्या दृष्टि है, दिन भर उसके अलग अलग परिणाम होते रहते हैं, तो कभी देवगति भी बांधेगा, कभी मनुष्य गति, कभी नरक गति, तिर्यंच गति, वो तो अलट कर पलट कर चलता है। गति का बंध तो होगा, परंतु उसमें किसी न किसी अन्य गति का होगा। दूसरे गुणस्थान में जाता है तो तीन गति में से किसी एक का बंध होगा। परंतु यहाँ ये जो जीव बताए हैं, तेजस का एक वायु का एक, कौन से गुणस्थान वाले हो गए? पहले के दूसरे पहले में ही हो गए। हाँ, और सातवें नरक के नार की भले दूसरे में होए कहीं भी हो, तो एक तिर्यंच गति का ही बंध करेंगे। शंका, सासाधन सम्य दृष्टि, इन दोनों प्रकृतियों के निरंतर बंधक कैसे हैं? तिर्य गति और तिर्यक परायज्ञानुपूर्वी का, पहले तो मिथ्या दृष्टि की बात की उन्होंने, तेजस कायिक वायु कायिक और मिथ्या दृष्टि सातवें नरक के नार की, इनकी बात हो गई। अब कहते सासाधन वाले कैसे इनका करेंगे निरंतर बंध, उसके अभी फिर बता रहे। यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तम पृथ्वी के सासाधन सम्यक दृष्टियों के तिर्यक गति को छोड़कर अन्य गतियों का बंध ही नहीं होता। तो उसकी अपेक्षा से, क्योंकि अग्नि का एक तो दूसरे गुणस्थान में आते नहीं है, तो सातवें नरक के नारकी तो आते हैं, और उन्हें तो एकमात्र तिर्य गति का ही बंध होता है। कहते चार संस्थान, चार सहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय प्रकृतियां स्त्री वेद के समान है, क्योंकि सांतर बंधित्व के प्रति इन प्रकृतियों में स्त्री वेद से कोई भेद नहीं है। सांतर है क्योंकि ऑप्शनल है ना, प्रतिपक्षी वाले हैं, उस अपेक्षा सांतर है। निज गोत्र तिर्यक गति के समान है, इसमें भी वही रूल लेना। सांतर निरंतर क्यों कहा है, तो प्रतिपक्षी, पर विशिष्ट गति में, या जैसे अग्नि का एक है, वायु का एक है, सातवें पृथ्वी वाले हैं, तो उनमें क्या है, निरंतर होगा। तो नीच गोत्र तिर्यक गति के समान है, क्योंकि तेज कायिक और वायु कायिक तथा सप्तम पृथ्वी के नारकियों में नीच गोत्र का निरंतर बंध पाया जाता है। अब सूत्रोक्त प्रकृतियां, ये 25 प्रकृतियों के बारे में जो बात चल रही है, क्या प्रत्ययों से बनती है या क्या उनके बिना? प्रत्ययों से बंधेगी। तो मिथ्यात्व में कितने, मिथ्यात्व दृष्टिगुण स्थान में कितने प्रत्ययों से बंधेगी? 55। और सासाधन वाले को कितने प्रत्ययों से बंधेगी? 50। हाँ, अब देखते हैं यहाँ क्या कहते हैं, इसका अर्थ कहते हैं। मूल प्रत्ययों से कितने बनते हैं? तो मिथ्यात्व में चार होते हैं और उसमें तीन होते हैं, बाद में उत्तर की बात करेंगे। इसका अर्थ कहते हैं, मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग संज्ञा वाले चार मूल प्रत्ययों से और 55 उत्तर प्रत्ययों से, 55 हुआ है, 55 ख्याल है ना, ये तो नाना जीवन की अपेक्षा बताए। अब एक जीव को जैसे हमने देखे थे वहाँ 10 हो सकते हैं या कितने कितने हो सकते हैं, 18 भी में एक जीवन, वैसे एक समय में संभव होने वाले 10 और 18 जघन्य उत्कृष्ट प्रत्ययों से इन प्रकृतियों को बांधते हैं। एक जीव के एक समय में कम से कम 10 और उत्कृष्ट 18 हो सकते हैं, गिनेंगे मिथ्या दृष्टिगुण स्थान में कम से कम 10। हमने देखे ना चार मूल प्रत्यय, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग। मिथ्यात्व हमने गिने 5 प्रकार के हैं, है ना, हाँ, उसमें एक वाला लिया चार मूल। ये 10 में जब हम एक मिथ्यात्व को लेना, कोई एक मिथ्यात्व, 5 में से कोई एक, एक समय की बात है, 5 में से कोई एक। अविरति में कम से कम लेना है तो एक इंद्रिय और एक काय बद प्राणी असंयम, 2 असंयम, 3 हो गए ना, एक मिथ्यात्व, 2 असंयम, कम से कम लेना है इसलिए। उसके बाद कषाय, विसंयोजन वाला लेना है, हाँ, वो 10 वाले में विसंयोजन वाला लिया था, हाँ, तो 3, हाँ, एक वेद हास्यरति वाला युगल बैजू गुप्सा नहीं लेना है, तो कितने हुए कषाय? 4, 2, 6, 7 हुए, 7 हुए। विसंयोजन में 3 लेना, 3 एक वेद, 4 हुए और एक युगल, हाँ, 6 हुए, 3, 6, 9 और एक योग, ये 10 हुए। और मैक्सिमम 18 कैसे गिने थे? एक मिथ्यात्व अवृत्ति में, एक तो एक इंद्रिय संबंध एक ही होगा, 5 इंद्रियों का एक साथ नहीं है, और 6 काय को बद, ये 7 हो गए, वो ये 8 तो ये हो गए, और एक योग ने ये 9 हो गए। अब कषायों में कितने लेना है? 4 कषाय, एक वेद, हास्यरति का युगल यानी 7 हुए, और भयु उपसा दोनों, ये 9, हाँ, योग हमने पहले 9 में गिने थे, ये 9, 9, 18 हुए, है ना, ये 10 से लेकर 18 मिथ्यात्व गुणस्थान में। देखो सासादन सम्य दृष्टि मिथ्यात्व को छोड़कर शेष तीन मूल प्रत्ययों से यानी अविरति कषाय और योग 50 उत्तर प्रत्ययों से 50 में 12 प्रकार की अविरति और कषाय में किसको लेना अभी आनंदानुबंधी लेना है दूसरा गुणस्थान है ना हाँ हाँ मिथ्यात्व को तो छोड़ा हमने कषाय में वो लेना और फिर योग में एक लेना है 50 उत्तर प्रत्ययों से योग में हमने आहार कहार मिश्र छोड़े थे पहले ही 13 योग में से लिया था ना उसको यहाँ भी लेना तथा एक समय में संभव 10 और 17 जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययों से ये 10 में तो अनंतानुबंधी को लेना है और मिथ्यात्व को छोड़ना है उत्कृष्ट प्रत्ययों से इन प्रत्ययों को बनते हैं विशेष यह है कि तिर्यक आयु के वैकृत मिश्र और कारमान का योग के बिना मिथ्या दृष्टि के 53 तथा वैकृत मिश्र कारमान और औदारिक मिश्र के बिना सासादन सम्यक दृष्टि के 47 प्रत्यय होते हैं क्या कहते हैं तिर्यक आयु के प्रत्यय ने तिर्यक आयु के बंध के कारण बराबर जब आयु का बंध होता है तो कौन कौन से प्रत्यय है उसकी बात है तो यहाँ क्या तिर्यक आयु के वैकृत मिश्र और कारमान का योग के बिना जब वैकृत मिश्र का योग चल रहा है सुनो बराबर तो वैकृत मिश्र ने देवों की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था तब आयु का बंध होगा कि नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि देवों में जो आयु का बंध होता है वो तो अंतिम 6 महीने में जो कुछ त्रिभाग पड़ते हैं उसमें होता है इसलिए कारमान का योग की अवस्था में और वैकृत मिश्र की अवस्था में तिर्यक आयु का बंध नहीं होगा एक बात बराबर तो मिथ्या दृष्टि में हमने 55 देखे थे तो तिर्यक आयु के बंध में 53 ही उसके प्रत्यय कारणभूत होते हैं वैसे ही सासादन समय दृष्टि में अभी बता रहे हैं हाँ सासादन समय दृष्टि वाले के मरण तो है उसमें वैकृत मिश्र भी नहीं है कारमान भी नहीं है जैसे ऊपर जो दो लिए वो भी नहीं और औदारिक मिश्र लिया यानी सासादन वाले के सासादन गुणस्थान में जो बंध होता है सासादन वाले को तिर्यक आयु का बंध होगा तो औदारिक मिश्र अवस्था में सासादन गुणस्थान नहीं होगा ऐसा इनका कहना है बंध आयु का बंध नहीं होगा तिर्यक आयु का बंध नहीं होगा देखो सामान्य की बात नहीं है सासादन गुणस्थान प्लस औदारिक मिश्र लिया है फिर से मैंने जरा शुरू में घोटाला किया मैं फिर से बताती हूँ अब ऐसा लेना है सासादन समय दृष्टि मरकर मनुष्य में आवे या तिर्यंच में आवे तो उसके तो औदारिक मिश्र का योग होगा उस अवस्था में वो तिर्यक आयु का बंध करेगा कि नहीं करेगा देखो यहाँ औदारिक मिश्र को क्यों टाला उन्होंने देखो हम दूसरी बात करते जनरल बात कोई औदारिक मिश्र का योग वाला जीव तिर्यक आयु का बंध कर सकता है कि नहीं कर सकता तो अपर्याप्तों को क्या होगा ख्याल है लब्धि अपर्याप्तक जीव जो है मनुष्य हो या तिर्यंच हो तो वो दोबारा आयु का बंध करते हैं तो तिर्यक आयु का बंध तो कर सकते हैं है ना अपर्याप्त में से मनुष्य आयु का भी बंध कर सकते हैं देवनारगी का नहीं करेंगे लब्धि अपर्याप्तों को मनुष्य आयु तिर्यंच आयु तो बंध ही सकती है तो औदारिक मिश्र जनरल जो हो वो तो मिथ्या दृष्टि होते हैं उन्हें तो तिर्यक आयु का बंध संभव है परंतु यहाँ औदारिक मिश्र प्लस सासादन गुणस्थान क्योंकि वो पर्याप्त में ही जन्मते हैं हमने जो देखा था वो तो लब्धि अपर्याप्त में वो आते ही नहीं है, सासाधन वाले लब्धि अपर्याप्त में आते ही नहीं है। तो पर्याप्त जो है वो औदारिक मिश्र में वो आयु का बंध भी नहीं होगा, मरेंगे भी नहीं। पर्याप्त होने के बाद जब यथा योग्य समय में आयु का बंध और मरण होगा वो होगा, इसलिए यहाँ औदारिक मिश्र को लिया है। ये थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि वो तो डिराइव करना पड़ता है। ऊपर तो मिथ्या तो गुणस्थान में तो वैकिरिक मिश्र को भी टाला और कारमान को भी टाला, क्योंकि वैकिरिक मिश्र अवस्था में कोई जीव आयु का बंध करता ही नहीं, तिर्यक आयु की बात ही छोड़ो, अन्य भी किसी आयु का बंध नहीं होता। परंतु औदारिक मिश्र वाला जो मिथ्या दृष्टि है वो तो आयु का बंध करेगा, क्योंकि सारे अपर्याप्त जीव उसी में पड़े हैं और उसी में आयु का बंध होता है, मरण होता है, जो कुछ है। परंतु यह सासाधन वाला लिया है, सासाधन वाले पर्याप्त में जन्मते हैं, तो उनके औदारिक मिश्र अवस्था में आयु का बंध भी नहीं है और मरण भी नहीं है। इसलिए वहां हम हमेशा कितने 50 देखते हैं, उसके बदले वहां 47 लिए प्रत्यय। अब गति संयुक्त की बात करते हैं। गति संयुक्त प्रश्न का उत्तर कहते हैं वह इस प्रकार है, यानी कौन से गति के साथ इसका बंध होता है। स्थान वृद्धि आदि तीन तथा अनंतानुबंधी चतुष्क को मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियों से संयुक्त, यानी कौन सी गति बांध रहा है इसके साथ साथ उसकी बात है। और सासाधन सम्य दृष्टि नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त बांधता है। जो सासाधन सम्य दृष्टि है वो नरक गति के बंधे की विच्छित्ति पहले में हो जाती है। तो सासाधन वाले को स्थान वृद्धि बनते तो है, परंतु वो तीन ही गति का बंध करता है, तीन गति में से कोई एक, नरक गति का बंध उसके नहीं है, इसलिए सासाधन में से उसको टाल दिया। अब स्त्री वेद को बांधने वाले कौन है, कौन है ने कौन सी गति के साथ, नरक गति के साथ कौन से वेद का बंध हो। हाँ देखो, स्त्री वेद को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त बांधता है, ये तो आसान है ना। मिथ्या दृष्टि जीव नरक गति को बांध सकते हैं, परंतु नरक गति के साथ तो नपुंसक वेद का बंध होगा, उसके साथ जो वहां जो उदय रूप होते वो गति बनती है तब उसको नपुंसक वेद का बंध। मिथ्या दृष्टि जीव कभी जाकर तिर्यंज गति बांधेगा, उसके साथ स्त्री वेद का बंध हो सकता है उसको। तिर्यक आयु, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी और उद्योत को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि तिर्यक गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि उसके साथ बंधने वाली है ये। तिर्यक आयु का बंध हो रहा है तो उसके साथ तिर्यक गति बंध रहा है, तिर्यक गत्यानुपूर्वी बंध रही है। और उद्योत भी सभी को नहीं बंधेगी, मगर वो बंधेगी तो उसके साथ बंधेगी। चार संस्थान और चार सहननों को मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यक गति व मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं। देखो, ये सहनन तो तिर्यक गति के साथ और मनुष्य गति के साथ बंधेगा, और देव गति के साथ सहनन की तो बात समझ में आए, सहनन नहीं बंधेगा, बराबर। अब बात रही संस्थान की, तो यहाँ चार क्यों लिया। हाँ, देवगति वाले को संस्थान तो होना चाहिए और नरक गति वाले को भी संस्थान तो होना चाहिए, भले सहनन उसके साथ नहीं बंधे तो अरविंद भाई हंस रहे हैं, हाँ बता दीजिए। देव गति के साथ समचतुरस्य संस्थान का बंध होगा और नरक गति के साथ हुंडक संस्थान का बंध होगा, इसलिए बीच तो बीच वाले चार किसके साथ बंधेंगे। हाँ, मनुष्य तीन इंच के साथ है। अप्रशस्त, हाँ, नरकों में सब जगह हुंडक संस्थान है। हमने देखा था उसका वर्ण भी पूरा ही काला रहता है. द्रव्य लेशा हमने देखी थी कृष्ण ही होती है, भाव लेशा अलग अलग है, ऊपर कपोत है, फिर बीच में नील है, फिर नीचे कृष्ण लेशा. परंतु शरीर के वर्ण की अपेक्षा सब जगह कृष्ण लेशा है उनके द्रव्य से. देवों को भाव लेशा जो है पीत पद्म और शुक्ल होती है. द्रव्य लेशा उनके अलग अलग होते हैं ना वर्ण, देवियों के पीत होता है. वर्ण अलग अलग हो गए मेरे ख्याल से, द्रव्य लेशा की बात. हाँ द्रव्य लेशा पूछ रहे. हाँ शुक्ल होगी. हाँ वो द्रव्य लेशा की बात पूछ रहे हैं अरविंद भाई, द्रव्य लेशा की बात पूछ रहे. नहीं मेरे भी पढ़ने में नहीं मर. हाँ अच्छा, भाव और द्रव्य लेशा एक ही है. अच्छा हाँ हाँ, देवी हो तो जहाँ जन्म लेती वहीं की, पर इन्होंने बता दिया भाव और द्रव्य लेशा सेम होती है. तो नीचे के स्वर्गों में भाव से तो पीत लेशा होती है और द्रव्य से भी. अब देवियाँ उत्पन्न होती है पहले दूसरे स्वर्गों में, और ऊपर के भले वो देवों की नियोगिनी है, वो यहाँ आके ले जाते तो उनकी लेशा तो वही रहेगी. ऊपर गए तो लेशा नहीं बदलेगी. सब देवों के लिए समचतुरस्र, हाँ सब के लिए, भवन त्रिकोण के लिए भी. हो गया समय, तो अभी ये वाक्य पूरा करेंगे इतना. अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय और निज गोत्र को मिथ्या दृष्टि देवगति के बिना तीन गतियों से संयुक्त, क्योंकि देवगति बनती है तो उसके साथ प्रशस्त प्रकृतियां बनती है. और सासाधन सम्यक दृष्टि देव व नरक गति के बिना दो गतियों से संयुक्त बांधता है. देखो मिथ्या दृष्टि जीव क्या है, तीन गतियों के साथ बांधता है इन अप्रशस्त प्रकृतियों का. कौन सी अप्रशस्त व्यक्ति? दुर्भग दुस्वर अनादेय नीच गोत्र. बराबर, मिथ्या दृष्टि तो बांध सकता है और सासाधन सम्यक दृष्टि नरक गति के साथ नहीं बांध सकता. ऐसा क्यों? पहले गुणस्थान वाला तो नरक गति के साथ इन सबको बांधता है. हाँ तो नरक गति ही नहीं बांधता तो उसके साथ बांधने का सवाल नहीं आता. हा? चलो यहाँ रुकते अभी. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी.